Om Namah Shivaya. Dear listeners of Shaivam.org, the next program is Spiritual Discourse. In this, you are about to listen Kaivalya Upanishad, presented by Swami Sri Dharmanandiji Maharaj. Thank you. Om Namah Shivaya.
To Atharvedya Kaivalya Upanishad, pehle uchcharan kar le. Tasmai sa huvacha pitamahascha. श्रद्धा भक्ति ध्यान योगात अवैहि न कर्मणा न प्रजया धनेन त्यागेन एके अमृतत्वमानसो परेण नाकं निहितं गुहायाम् विभ्राजते यद् यतयो विशन्ति न कर्मणा न प्रजया धनेन त्यागेनेके अमितत्वमानसो परेण नाकं निहितं गुहायाम् विभ्राजते यद् यजतयो विशन्ति शन्ति। तो कैवल्योपनिषद के प्रारंभ में प्रजापति ब्रह्मा ने यही कहा था कि श्रद्धा भक्ति ध्यान योगात अवैहि। श्रद्धा भक्ति ध्यान योग से परमात्मा को जानो, उपलब्ध करो। श्रद्धा की बड़ी महिमा। अद्वैत सिद्धिकार स्वामी मधुसूदन सरस्वती जी ने भी अद्वैत सिद्धि में लिखा, श्रद्धा धनेन मुनिना मधुसूदनेन। श्रद्धा रूपी धन के द्वारा उसकी उपलब्धि होती है। गीता में आया है, श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परसंयतेन्द्रिय। ज्ञानम लद्वा पराम शांतिम अचिरेणाधिगच्छति। तो यहां एक विचारणीय विषय है। किसके पूर्व आप लोगों ने श्रवण किया था कि श्रोतव्य श्रुतिवाक्येभ्य, आगे मंतव्यश्च उपपत्ति भी, मत्वा सतम ध्येयम एते दर्शन हेतव। आत्म साक्षात्कार कैवल्योपलब्धि का साधन श्रवण मनन निध्यासन का था। निध्यासन मतलब ध्यान, एक ही बात है। अब फिर यहां कह रहे श्रद्धा भक्ति ध्यान से जानो, तो थोड़ा विरोध हो रहा कि नहीं है? विरोध नहीं, इसको समन्वय कर, विरोधाभास इसको बोलते, विरोधाभास। तो विरोधाभास प्रतीत हो रहा परंतु विरोधाभास नहीं, क्योंकि श्रद्धा से श्रवण लेना, भक्ति से मनन और ध्यान से, ध्यान का निध्यासन अर्थ होता ही है, वहां कुछ नहीं करना है। क्योंकि श्रद्धा जब होती है तो श्रद्धा होने के बाद हम किसी कार्य में प्रवृत्त होते हैं। पर श्रद्धा किससे होती है? जब आप श्रवणेन्द्रिय के द्वारा किसी के विषय में कुछ सुनते हैं, किसी ने बता दिया कि भगवान शंकर की प्रदोष काल में उपासना करने से सब कुछ मिल जाता है, धन धान्य संपत्ति दौलत सारी समस्या दूर हो जाती है, बार बार आपने श्रवणेन्द्रिय से सुना, हालांकि आपने शंकर भगवान को देखा नहीं, अनुभव नहीं किया, पर बार बार श्रवणेन्द्रिय से हम सुनते हैं, सुनते सुनते मन में बड़ी भारी श्रद्धा हो जाती है। भाई जब ऐसी महिमा है तो अपने कोई प्रदोष व्रत में भगवान शंकर की पूजा करनी चाहिए। अब आपने सुना कि एकादशी के दिन उपवास करके भगवान विष्णु की पूजा की बड़ी महिमा, तो दो बार तीन बार चार बार जब श्रवणेन्द्रिय से सुनते हैं सुनना मतलब श्रवण, तो सुनने के बाद मन में श्रद्धा जग जाती है और श्रद्धा होने के बाद तब जाकर भक्ति। देखो श्रद्धा श्रवणेन्द्रिय जन्य है और जो भक्ति है ना, भक्ति में भावना की प्रधानता, भावे बिना भक्ति और भक्ति बिना शक्ति और शक्ति बिना विरक्ति और विरक्ति बिना कुतो निवृत्ति, ये प्रसिद्धि है ना कहावत, अभंग में भी आता है। बिना भावना के भक्ति हो नहीं सकती। अच्छा भावना कैसे होती है, तो भावना मन का विषय है, मन का विषय है भावना। मन के द्वारा हम किसी विषय में भावना करते हैं और बुद्धि का विषय है ध्यान। ध्येय चिंतायाम धातु से ध्यान शब्द बनता है, कर्णाधिकर्ण्यो चसे लूट पड़ते कर देना, लूट को योरनाको से अन कर देना, ध्यान बन गया। थोड़ा व्याकरण का बता दिया, इसलिए तो ध्येय चिंतायाम से ध्यान बनता है। तो ध्यान का जो कारण है वो बुद्धि है, ध्यान मतलब चिंतन। तो चिंतन हम बुद्धि से करते हैं। देखो तीन आ गया ना, श्रवण भी आ गया, मनन भी आ गया और निध्यासन भी। जब श्रवणेन्द्रिय से गुरु के वाक्य को, वेदांत के वचनों को सुनते हैं, तब जाकर श्रद्धा होती है। और भगवान शंकराचार्य ने लिखा विवेक चूड़ामणि में कि गुरु वेदांत वाक्येषु विश्वास श्रद्धा। सुनते सुनते जब सदगुरु और वेदांत के वचनों में विश्वास हो जाता है, तब कहते हैं ये श्रद्धालु है। फिर इसके बाद प्रारंभ होता है मन का, फिर मन से तद अनुसार भावना बनती है। भावना बनने के बाद तब जाकर हम भक्ति में लग जाते हैं। तो श्रद्धा से श्रद्धेय के प्रति समर्पण भाव जगता है। सभी के श्रद्धेय अलग है, किसी के श्रद्धेय राम, किसी के कृष्ण, किसी के शिव, किसी के गुरु, किसी के माता पिता, श्रद्धेय अलग। तो श्रद्धेय में जब समर्पण भाव होता है, तभी जाकर श्रद्धा की पूर्णावस्था होती है। जब श्रद्धा की पूर्णावस्था होती है, तब जाकर के फिर मन शुरू होता मनन, और मनन की पूर्णावस्था है भक्ति। जब मनन करते करते वह मनन पूर्ण होती है, तब जाकर भक्ति में परिणत हो जाती है। जैसे सबरी का दृष्टांत बहुत मशहूर है और भगवान शंकराचार्य भी भक्ति का अर्थ करते हैं, स्वस्वरूपानुसंधान नम भक्ति। सबरी ने इतना स्वस्वरूप का अनुसंधान किया कि वह साक्षात ब्रह्ममय हो गई। पंपा सरोवर में जब वह एक दिन बैठी हुई थी, उधर से एक बड़े कर्मकांडी जो है ना ऋषि आए, कर्मकांड पर उनका ज्यादा आग्रह था। उन्होंने देखा कि सबरी के शरीर की छाया पंपा सरोवर में पड़ रही, बड़े क्रुद्ध हो गए। बोले तू जो है निम्न जाति में प्रकट हुई और सरोवर के सामने बैठी, तेरी छाया इस पंपा सरोवर में पड़ रही, इससे जल अशुद्ध हो रहा, बहुत उसकी धुनाई कर दी। बेचारी रोती बिलखती दूर चली गई। जैसे ही वे कर्मकांडी ऋषि गोता लगाए, पंपा सरोवर में कीड़े कीड़े हो गए, बहुत मलिन, अब तो घबराए, अब क्या किया जाए। इतने में सारे ऋषि आ गए, बोले भाई ये पंपा सरोवर का जल इतना मलिन और कीड़े कैसे पड़ गए। संयोग से थोड़े दिन में भगवान राम लक्ष्मण का भी आगमन हुआ। सबने कहा कि पतित पावन भगवान राम के चरण है, अल्लाह को इन्होंने तारा, राम जी के चरण कमल को यदि इसमें जो है डाला जाए या चरण के पघारन को जाल डाला जाए, पर वो जल जिसका तस न पवित्र हुआ न कीड़े समाप्त हुए। फिर लक्ष्मण जी ने डाला, फिर भी वैसे एक वैसे। सारे ऋषियों ने अपने चरण कमल को धो करके जल डाला, फिर भी वैसा का वैसा। अब राम जी के चरण कमल से क्यों नहीं पवित्र हुआ? तो कहते राम जी का रावण के ऊपर दुष्समय में द्वेष सीता हरण हो जाने से था, और लक्ष्मण जी का द्वेष था मेघनाथ से, और ऋषियों का क्या था? आपस का ये जो मात्सर्य था, उसको मात्सर्य बोलते, ईर्ष्या नहीं बोलते। एक दूसरे का मत जो है ना, मतम शरद गच्छति दी मात्सर्य, तो मात्सर्य से वो पवित्र नहीं हुआ। फिर सभी ने कहा वह किस दिन से, कब से, कैसे अपवित्र हुआ ये जल, कैसे कीड़े पड़े? तो बोले फला दिन एक ऋषि ने सबरी को बड़ा प्रताड़ित किया। बोले सबरी को बुलाओ, बहुत बड़ी भक्ता। भगवान राम ने कहा सबरी जब गोता लगाएगी तब जाकर पवित्र होगा। सभी ने कहा सबरी? बोले कौन सबरी? सोचा हुआ कोई ब्राह्मणी होगी। बताए वही सबरी जो मतंग ऋषि के आश्रम में रहती है। बोला अच्छा। अब राम जी ने कहा तो क्या करते, एक दूसरे के मुख को देखने लगे। कई बार ऐसा होता है ना, जब बड़े आदमी कोई बात करते हैं और सबको अनुकूल नहीं होता है तो एक दूसरे की तरफ देख करके एक दूसरे की भाव को लेते हैं। पर वो कहा होता ना, बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधे। अब भगवान राम कह रहे कि सबरी को बुलाओ और यह गोता लगाएगी तब जाकर जल शुद्ध होगा। जैसे सबरी आई और भगवान की आज्ञा से जब पंपा सरोवर में गोता लगाई तो कहती सारा जल शुद्ध हो गया। तब जाकर ऋषियों के सबरी के महात्म्य का अनुभव हुआ। भगवान राम ने कहा इसकी जीवन में श्रद्धा भक्ति का साक्षात झरना है, क्योंकि सबरी ने मतंग ऋषि से श्रवण किया था भगवान राम की महिमा, भगवान राम के निर्गुण निराकार को भी श्रवण किया था, और सगुण साकार दो दशरथ रूप के दशरथ नंदन रूप से आएंगे, तो श्रवण करने से श्रद्धा हुई थी। इसके बाद उसने ऐसी भावना भक्ति किया, कुछ भक्ति के द्वारा वह तन्मय हो गई। ध्यान का मतलब होता है तदाकार, इष्टाकार, गेयाकार। तो वह साक्षात उस राम का ध्यान करते करते, चिंतन करते करते साक्षात राममय ब्रह्ममय हो गई थी। जैसे गोता लगाए जल पवित्र हो गया। तो नारायण हमारे जीवन में श्रद्धा मतलब श्रवण और भक्ति मतलब मनन, क्योंकि मनन होता है मन के द्वारा, फिर भावना बनती है, और बिना मनन के भावना भी नहीं होती है। मनन से क्या होता है कि हम तर्क वितर्क करके शंकाओं को किनारे कर देते हैं, जब शंका किनारे हो जाते तब जाकर भावना बनती है। चिंता तो अलग हो गया, चिंतन मनन एक ही है पर चिंता अलग है। चिंता शब्द का प्रयोग वहां होता है जब हम किसी वासना तृष्णा से किसी विषय के बार बार चिंता करते हैं, तो उसको कहते चिंता तुर है। और चिंतन मनन अलग है, चिंतन मनन मतलब किसी विषय का गंभीर बार बार जो चिंतन करते हैं ना, विचार करते हैं, विचार कैसे यह ऐसा हो सकता कि नहीं, इसमें क्या लाभ क्या हानि है, इसको कैसे करे कैसे न करे कब न करे, इसका नाम है चिंतन मनन। तो चिंतन मनन होता है मन के द्वारा, तब जाकर भावना बनती है। दृष्टांत के लिए जैसे जब कपड़ा बनाते हैं ना, तो आपने देखा होगा कि पहले सूत लेते हैं जो कपास होता है, उस कपास को लेकर धुनाई करते हैं। अब तो मशीनें आ गई, तो जब मशीन में धुनाई करते हैं तो आपने देखा होगा उसके जो बीज होता है ना कपास का, वो बीज एक तरफ पीछे गिर जाता है और जो धूल होता है नीचे गिरता है। मशीन लगी रहती है, वैसे डालते हैं मशीन में, तो बीज तो पीछे गिरता है और धूल नीचे गिरता है, और साफ जो रुई होता है आगे चला जाता है। ऐसे ही जब हम मनन करते हैं तो मनन से तर्क वितर्क जो शंका है, असंभावना है, विपरीत भावना है, वे समझो कि बीज की तरह से मल की तरह नीचे गिर जाते, शुद्ध कपास अलग हो जाता है। तो मनन करने से ईष्ट में, गेय में, उपास में आपकी दृढ़ता आती है कि ऐसा ही है। जितने कचड़ा है ना, बीज है, मल सब नीचे चले जाते हैं। तो मनन करने के बाद तब जाकर ध्यान, मतलब तदाकार वृत्ति बनती है। इसीलिए यहां पर श्रद्धा का अर्थ लेना श्रवण, भक्ति मतलब मनन, मनन मतलब स्वस्वरूपानुसंधान। इसके बाद निधि ध्यासन, तदाकार वृत्ति। तदाकार वृत्ति को बोलते ब्रह्माकार वृत्ति। अवैही ही इसके द्वारा ही आत्मा को जानो, अवैही मतलब जानो। वो एक थी ना महाराष्ट्र में, क्या नाम, जमुनाबाई, नहीं जमुना जनानी, जमुनाबाई की बहुत प्रसिद्ध घटना है कि जमुनाबाई वो गोबर के उपला, हाँ जनाबाई, ठीक ठीक, जमुनाबाई की दूसरी कहानी है। तो जनाबाई गोबर की उपला, हिंदी उपला बोलते हैं, बना रही थी। बहुत दिन हो गए, किसी ने उसके जो उपले थे ना कंडे चुरा लिए। उधर से संयोग से नामदेव जी आ रहे थे तो जनाबाई को बड़े दुखी निराश देखे, पूछे क्या बात है, उदास क्यों? जनाबाई ने कहा हमने बहुत सारे उपले कंडे बनाए थे, सब चोरी हो गए। नामदेव ने कहा चिंता की बात नहीं, मैं पहचान लूंगा तुम्हारा कौन सा उपले है, कंडे हैं। जनाबाई ने कहा कैसे जानेंगे? बोले तुम्हारे उपले में बिट्ठल बिट्ठल की ध्वनि आएगी। सब कंडे को कान में लगा रहे, जिसमें बिट्ठल बिट्ठल की ध्वनि आए उसको बोलिए तेरे हैं और ये दूसरे के हैं। तो देखो जनाबाई ने कितना जीवन में श्रवण मनन निध्यासन किया। जिस चीज का श्रवण होता है उसी का मनन होता है और उसी का तदाकार वृत्ति निध्यासन होता है। तो उस जड़ उपले से भी बिट्ठल बिट्ठल की ध्वनि आ रही। तो ऐसे हमारे जीवन में तीनों की तारतम्यता होनी चाहिए, मतलब तीनों जब एक रेखा में आ जाते हैं तभी जा करके हमारे जीवन में हमारी साधना फलित होती है। अब श्रद्धा, भक्ति, ध्यान मतलब श्रवण मनन निध्यासन। इसके बाद अब उपदेश कर रहे हैं प्रजापति ब्रह्मा आसुलायन ऋषि को, न कर्मणा न प्रजया न धनेन त्यागेन एक अमृतत्व मानसु। अब आप थोड़ा इसमें निराश होंगे कि सीधा प्रहार किया न कर्मणा। हम आए दिन जल्दी जल्दी सत्संग स्वाध्याय सुन के और घड़ी देखते रहते कब पूरा होगा, अपने कारोबार में लगे, व्यापार में लगे, दुकानदारी में लगे। और यहां साफ साफ कह दिया न कर्मणा, तुम्हारे इन कर्मों से परमात्मा की प्राप्ति नहीं होगी। उपनिषद में एक जगह आया है, तद यथा इह कर्म चीतो लोको छियते तद अमूत्र। अमूत्र मतलब स्वर्ग लोक, परलोक। जैसे यहां का कर्मों से संग्रहित लोक अंतिम समय में हाथ से छीन लिया जाता है, छूट जाता है, ऐसे ही अमूत्र परलोक भी छीने पुण्य मर्त लोके विसंति। वेदारण्यक उपनिषद में जो सबसे पहले प्रकरण है उसका नाम अश्वमेध प्रकरण। तो वहां प्रारंभ में विचार किया कि वेदांत जो होता है ब्रह्म का प्रतिपादक, फिर यहां अश्वमेध याग का चर्चा क्यों किया, वही प्रारंभ में प्रथम प्रकरण में। तब भगवान भाष्यकार ने निर्णय दिया कि दुनिया में जितनी बड़े भी कर्म विशिष्ट उपासना है, सबसे बड़ा अश्वमेध याग है। अश्वमेध में कर्म भी है, उपासना भी है। तो उपासना विशिष्ट सर्वश्रेष्ठ कर्म है अश्वमेध याग, और उसका भी फल है हिरण्य गर्भ पद की प्राप्ति, जो अनित्य है, संसार के अंतर्गत है। जब इतने बड़े कर्म का परिणाम अनित्य है, हिरण्यगर्भ पद की प्राप्ति जो संसार के अंतर्गत है, फिर किसी भी कर्म से मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो सकती। कर्म केवल हमारे चित्त को शुद्ध करता, निष्काम कर्म करेंगे तो चित्त शुद्ध होगा, उपासना से एकाग्रता और ज्ञान से आवरण भंग। तो कर्म से आशा नहीं करना कि अमृत की प्राप्ति हो जाएगी, कर्म तो केवल जीवन यात्रा का साधन है, बस इतना है। जितने भी कर्म करते ना, कर्म हमारे इस पार्थिव शरीर और जीवन यात्रा का साधन है। और बहुत ज्यादा होगा 2-4-500 वर्ष तक लोग यश गाएंगे तो मान बड़ाई पश पद प्रतिष्ठा भी संसार के अंतर्गत ही है। तो स्थूल शरीर की व्यवस्था कर्म से होती और सूक्ष्म शरीर को जरा प्रशंसा स्तुति और यश प्रतिष्ठा मिलता है। सूक्ष्म शरीर का भोग है यश प्रतिष्ठा, ये खुराक है सूक्ष्म शरीर का, मन का खुराक है।